मेरे स्नेही साथियों नमस्कार। आज 28 अप्रैल 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो मैंने विषय चुना है, यह विषय मुझे प्रोवाइड किया है हमारे देश के अभी सबसे जाने माने और बहुत लोकप्रिय दिल अजीज स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा जी ने। इनफैक्ट मुझे नहीं मालूम मित्रों कि जो जिस स्टेटमेंट को लेकर आज मैं अपने लाइफ मैनेजमेंट पे बात करने जा रहा हूं, वो स्टेटमेंट उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में कहा है या शिकायत के तौर पर ही कहा है या बतौर सुझाव कहा है या यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, आई डोंट नो। क्योंकि जो कॉमेडियन होते हैं उनमें भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती, उनकी उसका अंदाज महत्वपूर्ण होता है और उस भाषा से रिफ्लेक्ट क्या होता है यह महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, मैंने उनको कहते हुए न तो सुना है न देखा है, अखबारों में जो छपा है उसके आधार पर मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इसीलिए इसके सही और गलत होने पर आप न जाएं, हो सकता है उन्होंने कहा ही न हो, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसे भी स्वीकार करते हैं। मेरा मकसद तो केवल उस वाक्य का विश्लेषण कुछ इस तरीके से करना कि हमारी जिंदगी को एक आईना मिल सके जिसमें हम थोड़ा सा झांक सकें, अपने को देख सकें, अपने को समझ सकें और सबसे बड़ी बात है कि समझने के बाद शायद थोड़ा बहुत कुछ कर भी लें। इसलिए मैं इस वाक्य को ले रहा हूं, तो इसके सही गलत अर्थ पर आप बिल्कुल मत जाइएगा, मैं स्ट्रेट सेंटेंस में ये बात ले रहा हूं। मित्रों, आपको कपिल शर्मा जी का जो स्टेटमेंट था परसों या कल के अखबार में था, उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं, इन इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं इनमें शराब की बिक्री बंद हो जानी चाहिए। ये बस केवल ये उनका स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, जो लंबी फ्लाइट्स होती हैं जो फॉरेन के लिए भारत से जा रही हैं या फॉरेन से भारत में आ रही हैं, तो उसमें जो यात्री होते हैं उनको सर्व की जाती है अगर कोई ड्रिंक करना चाहता है तो। अब देखिए कि उन्होंने सामान्य सी ये बात कही है और आप लोगों को इसके पीछे जो घटना है वो मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया से वो अपने ग्रुप के साथ प्रोग्राम करके लौट रहे थे तो अपने साथियों से वो काफी नाराज हो गए। एक तरह से वो बात बड़ी सार्वजनिक हो गई कि उन्होंने सुनील ग्रोवर और जो उनके दूसरे असगर साथी थे और उनका खुलेआम अपमान किया और उस अपमान की वजह से सुनील ग्रोवर अगर इतने नाराज हुए कि उन्होंने फिर कपिल शर्मा शो का बायकॉट कर दिया। कपिल जी ने बहुत कोशिश की, दूसरों ने भी बहुत कोशिश की कि वो इस शो में आ जाएं क्योंकि यह कपिल शर्मा शो बहुत पॉपुलर शो हो चुका था, काफी स्केल काफी व्यूवर्स थे, लेकिन वो आए नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कलाकार को शायद बहुत ज्यादा ठेस लग गई और अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद ये शो बंद हो जाएगा क्योंकि लोकप्रियता के पायदानों पर यह काफी नीचे शो चला गया है। खैर, ये एक घटना के पीछे जो पूरे के पूरे पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब मैं उस वाक्य पर आ रहा हूं, वाक्य पर नहीं बल्कि उस वाक्य के विश्लेषण पर आ रहा हूं। मित्रों, कपिल शर्मा जी ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जो शराब है जो सर्व की जाती है वो बंद कर दी जानी चाहिए, भले उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम मजाक में भी कोई बात कहते हैं तो हमारे अवचेतन मन से वो चीज निकलती है, भले हमारे कहने का अंदाज बदल जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है तो सच पूछे तो अपने साथ उनके जो बीती है उसको देखते हुए उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा है। उनके कहने का मतलब सिर्फ यही था कि अगर वो शराब सर्व नहीं की जाती तो बट नेचुरल है कि इन्होंने ड्रिंक भी नहीं किया होता, और अगर ड्रिंक नहीं किया होता तो वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए होते और अपने मित्रों का इस तरीके से, साथियों का जो उनके ट्रुप के मेंबर्स हैं उनका अपमान नहीं किया होता, और अगर अपमान नहीं होता तो आप देखिए कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, इसकी वजह से कपिल शर्मा जी की इमेज पर भी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं धुंधलापन आया ही है और फिर एक इतना अच्छा शो एक तरीके से बंद होने के करीब पहुंच गया है। और अगर ये शो बंद हो गया जिसकी ज्यादा आशंका है तो आप हम नहीं जानते कि फिर इस शो में जो कलाकार हैं उनके कैरियर के साथ आगे क्या होगा, क्योंकि मित्रों जिंदगी एक बार आपको बहुत बड़ा मौका देती है और यदि आप उसने उस मौके को अपने दामन में बहुत बचाकर थाम कर नहीं रखा तो तो फिर पता नहीं है वो दूसरा मौका देती है या नहीं देती है, और देती भी है तो कैसा होता है, और अगर मौके भी आते हैं तो हम पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते, वो अब भविष्य बताएगा। तो निश्चित रूप से कपिल शर्मा के मन में कहीं ना कहीं एक अपराध बोध तो है, और अपराध बोध होना एक बहुत अच्छी बात है कि मुझसे ठीक नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, ये वाक्य कम से कम ये बात तो कह रहा है। चलिए अब मैं इधर इसको खत्म करता हूं। मित्रों, हम सब जिंदगी में करते क्या है, देखिए गलतियां हमसे होती हैं, हम करते हैं चाहे जिस वजह से भी करें। हमारा दिमाग खराब हो गया था, हम तनाव में थे, गुस्से में थे, असंतुलित हो गए, इसलिए हमसे गलतियां हो गई। गलतियां केवल शराब पीने की वजह से ही नहीं होती हैं, शराब पीने की वजह से तो गलतियां ही गलतियां होती हैं ज्यादातर। अब नहीं पिए होते हैं तब भी बहुत सी गलतियां करते हैं, और जानते हुए भी गलतियां करते हैं कि हम गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि उस समय चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। चीजों पर क्या, खुद पर ही हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो चाहे उसकी वजह शराब बन जाए, चाहे हमारा आक्रोश क्रोध बन जाए, चाहे हमारा भावनात्मक असंतुलन बन जाए, कोई भी कारण हो सकता है जहां हमारा संतुलन खत्म हुआ, हम धड़ाम से गिरे, और यही उनके साथ भी हुआ। अब होता क्या है कि जब हमसे ऐसी चूक हो जाती है जो बहुत बड़ी चूक है और सार्वजनिक चूक हो गई है, तब फिर मित्रों हम करते क्या है, हम करते यह है कि हम अपना जो ठीक रहा है वो किसी दूसरे के सिर पर फोड़ना चाहते हैं, और अपने दामन को बड़ा पाक साफ बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं ये गलती करता ही क्यों। आप देख रहे हैं इस वाक्य में जो सबकॉन्शियस माइंड पर जो बात दिखाई दे रही है, जो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आकर के जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो यही तो है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मूलतः गलती इस नियम की है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में शराब सर्व की जाती है। मित्रों, ये केवल उन्हीं की बात नहीं है, केवल एक घटना की बात नहीं है, ये हम सब की बात है और सारी घटनाओं की बात है। जहां भी हमको असफलता मिलती है, जहां भी हम उस असफलता का कोई न कोई जो संभवतः सबसे मजबूत कारण हो सकता है और जिस मजबूत कारण पर दूसरे थोड़ा यकीन भी कर सकते हैं, हम तुरंत अपने बचाव के लिए उसे ढाल की तरह ले आते हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार करता हूं, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक ढाल है, यह बहुत ही खतरनाक ढाल है। मित्रों, मैं इसे रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा ये मौका था, ये बहुत अच्छा अवसर था, जबकि हम इस घटना को एक आईने की तरह अपने चेहरे के सामने रख कर और अपने चेहरे को बहुत अच्छे से देख सकते थे। अदरवाइज तो देखिए हमारे चेहरे के बारे में दूसरे लोग ही बताते रहेंगे, और हो सकता है उनका परसेप्शन अपना हो जो मेरे वास्तविक चेहरे से मेल नहीं खा रहा है, वो अपने ढंग से बता रहा है, मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितना सही है कितना गलत है। वो मेरे दाहिने गाल पर जो निशान बता रहा है, काला निशान, हो सकता है कि वो उतना काला न हो जितना वो उसको दिखाई दे रहा हो, और अगर मुझे आईना मिल गया है तो उसमें तो मैं उसे साफ साफ देख सकता हूं। मेरे लिए ये मौका है, लेकिन मैं देखना नहीं चाहता। डर इस बात का है कि कहीं मैंने देख लिया और उस सच को मैं जान गया तो फिर क्या होगा, यानी कि सच से आंख मिलाने की ताकत, सच से आंख मिलाने का साहस मैं खो चुका हूं, मेरे पास है ही नहीं। और यदि मेरे पास वो साहस नहीं है, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, तो मान करके चलिए कि फिर जिंदगी में आगे कुछ कर पाने कि वो क्षमता भी खत्म है, वो ऊर्जाओं के स्रोत भी खत्म हो गए, क्योंकि ऊर्जा तो यहीं पलती बढ़ती और रिफाइंड होती है। ऊर्जा को तो आपको रिफाइन भी करना है ना, क्योंकि ऊर्जा से तो आपके हाथ में पत्थर है तो किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं, किसी के घर की शीशे भी तोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो उसे तराश करके और फर्स्ट क्लास गोपाल जी की मूर्ति भी बना सकते हैं। ऊर्जा तो सभी में लगेगी, तोड़ने में भी ऊर्जा लगेगी और पत्थर को खरोंच कर तोड़ करके मूर्ति बनाने में भी लगेगी, तो ऊर्जा का रिफाइनमेंट भी तो जरूरी है। और ये मौके होते हैं जब हम अपने ऊर्जा को रिफाइन कर सकते हैं। मित्रों, जहां तक शराब परोसने की बात है, अब मैं इसे इस रूप में ले रहा हूं कि देखिए इस दुनिया में तो सारी चीजें हो रही हैं, दुनिया में पता नहीं कितनी चीजें हैं, ये तो मेरा अपना विवेक है, मेरी अपनी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं नहीं। हम ज्यादातर इच्छाओं से ड्राइव होते हैं, आवश्यकताओं से नहीं, और ये हमारे जीवन के संकट का सबसे बड़ा कारण है। और कुछ समय के बाद जो इच्छाएं वो इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ये इच्छा थी या आवश्यकता थी। हमको लगता है कि नहीं, हमारी तो आवश्यकता है, और आवश्यकता भी ऐसी वैसे नहीं, ये तो रोटी कपड़ा मकान की तरह की आवश्यकता है, ये तो प्राण वायु की तरह की आवश्यकता है, इसके बिना हम जी कैसे सकते हैं। कुछ दिनों तक करते करते हमारे दिमाग में ये भ्रम पैदा हो जाता है। तो आप दुनिया में इतनी सारी चीजें किनके पीछे भागेंगे? तो हम दुनिया को दोष देने लगे कि दुनिया ने इतनी सारी चीजें क्यों हमें दे दी है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में जब मेरी ये लोगों से बात होती है तो सबकी शिकायत होती है कि ये जो मोबाइल फोन आ गया ये हमारा बहुत सा समय खा जाता है, हम क्या करें? वो दोष मोबाइल को देते हैं। मैं आपको दो घटनाएं बता रहा हूं भी, तो ये अभी 4-5 दिन की है, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और व्हाट्सएप पर भी ये चीजें आ रही हैं। जैसे एक मैंने 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा, बिल गेट्स, उन्होंने अपने बेटे को जब तक कि वो 16 साल का नहीं हो गया मोबाइल फोन लेने नहीं दिया, कंप्यूटर लेने नहीं दिया। उनका बेटा बहस करता था और तर्क देता था कि मेरे सभी साथियों के पास है, आप मुझे नहीं दे रहे हैं, और ये बिल गेट्स है जो दुनिया के सबसे धनी आदमी है, लाखों मोबाइल दे सकते थे, मोबाइल से वो उसके कमरे की छतें तैयार करवा सकते थे, दीवारें खड़ी कर सकते थे, लेकिन एक मोबाइल नहीं दिया उन्होंने, जिससे पूरी दुनिया के हाथ में मोबाइल थमा दिए हैं, दुनिया के गोद में लैपटॉप रख दिए हैं, उनकी टेबल पर कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए हैं, अपने बेटे को मोबाइल नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि अभी तुम इसके लायक नहीं हो। व्हाट्सएप पर परसों मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज आया मेरे पास मार्क जकरबर्ग का, और उसमें लिखा हुआ था कि इस मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप और फेसबुक ला करके पति पत्नियों को इसी पर अब वो बातचीत करवा रहा है। पति पत्नी क्या है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिल रहे हैं, और यहां देखिए कि वो खुद क्या कर रहे हैं, और नीचे एक चित्र दिया हुआ था जिसमें मार्क जकरबर्ग किचन में अपनी पत्नी के साथ कुछ सब्जी वब्जी बनवाने में कटवाने में मदद कर रहे थे। मतलब वो तो आमने सामने पत्नी के साथ मिलकर बात कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और उन्हें हमारे हाथ में ऐसा व्हाट्सएप और फेसबुक उपलब्ध करा दिया, मंच उपलब्ध करा दिया है कि हम पति पत्नी के पास बातचीत करने के लिए सिर्फ यही एक आधार बन गया है। ये उनके बारे में था। अब ये है कि दोष व्हाट्सएप और फेसबुक का है, वो चीजें हैं, या हमारा है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। हमें देखना होगा मित्रों कि चीजें हम कैसे अपने लिए उपयोग में लाते हैं। हमने खंभे को पकड़ रखा है या खंभा ने हमको पकड़ रखा है? हमने खंभे को पकड़ रखा है और हम चिल्ला चिल्ला कर दोष खंभे को देते हैं कि यह मुझे छोड़ नहीं रहा है। फ्रेंड्स, जो भी विकास हो रहा है समाज में, इसे हम नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता, और रोका क्यों जाए? ये तो समाज है, विकास होने के लिए ही तो है। अगर रोका गया होता तो आदिम युग में रोक लिया जाना चाहिए था, जब आज भी हम पत्थरों के एक दूसरे से रगड़ करके अग्नि प्रज्वलित कर रहे होते। आखिर में समाज आज यहां तक पहुंचा है तो विकास करते करते ही पहुंचा है, रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, रोका भी नहीं जाना चाहिए। हमें अपने अंदर ये क्षमता पैदा करनी पड़ेगी कि हम ये फैसला करें कि अगर मैं बाजार में जा रहा हूं तो उन चीजों को देख देख करके ललचा रहा हूं, अपने को न ले पाने के कारण असहाय महसूस कर रहा हूं, या बादशाह की तरह मैं ये कह सकता हूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम सजे रहो, मुस्कुराते रहो, मुझे बुलाते रहो, खूबसूरत लगते रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने फैसला कर लिया कि आपको इसकी जरूरत नहीं है तो बात खत्म, चाहे वो करोड़ों की हो, आपके लिए कौड़ियों की है। और अगर आपने फैसला कर लिया कि मेरे लिए बहुत जरूरी है तो चाहे वो कौड़ियों की क्यों ना हो, हमें करोड़ों की लगेगी। तो मित्रों, ये उनके स्टेटमेंट को लेकर के मैंने थोड़ी सी बातें आपसे की हैं, आप सब भी इस पर विचार करें और मुझे अपने विचारों से अवगत कराएं। अंत में एक सूचना, और वो ये दोस्तों कि आज शुक्रवार है, आपके शनिवार और रविवार के दिन बड़े खुशनुमा तरीके से बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सोमवार को फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।